ऐ नबी इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं और ना नुकसान, जबकि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा चुका, तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? सोचिए जरा अपने ऊपर लें, अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया तो क्या अब मैं उल्टे पांव फिर जाऊं? कैसे? इस मिसाल पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर ले जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरान और सरगर्दा फिर रहा हो। ये कौन है? किताब से दूर, नफ्स के पीछे कहीं किसी गुना में पड़ गया, बुरी सोहबत पड़ गई। ऐसे जैसे शैतान किसी को वरगलाते हैं, इस तरह उसके बुरे दोस्त, उसके साथी उसको गलत चीजों की तरफ बुलाते हैं, हालांकि इसके साथी इसको पुकार रहे हों कि इधर आ जाओ, ये सीधी राह मौजूद है। ये कौन है? आप जैसे प्यारे कुरान पढ़ने वाले दोस्त, कोई ऐसी सिस्टर, कोई दोस्त, कोई बहन आपकी कि जो किसी गलत कंपनी में पड़ चुकी है, होश ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शैतानों के हाथ में आ गई, लेकिन आप उसको अभी तक पुकारे इधर आ जाओ इधर आ जाओ, आपका मेरा काम यह है। और हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है, इसी की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि मालिके कायनात के आगे सरे इताद खम कर दो। ये है हिदायत का पारा, आपने नोट किया पूरे पारे में हिदायत, और ये कुरान का हिस्सा कि जब सबसे ज्यादा हिदायत के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए, कभी अलहुदा कहा, कभी हुदन कहा, और कहीं कुछ, क्या पता चला कि हिदायत जिसको चाहिए उसको किताब से जुड़ना पड़ेगा। हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है, इसी की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि मालिके कायनात के आगे सरे इताद खम कर दो, नमाज कायम करो और इसकी नाफरमानी से बचो, इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। बस इसी को याद रख ले, इलाही ही तो शरू, दुनिया तो गुजर जाएगी, वहां जाकर क्या बनेगा? आज अगर मेरा सांस उखड़ जाए, मेरे पास है क्या? चंद मिनट में हमारा नाम मैयत में बदल सकता, चंद दिन में हम है से थे पे चले जाएंगे, फिर कोई ये नहीं कहेगा आप हैं, वो कहेंगे वो थी। और आप कभी अल्लाह ना करे किसी के मरने की खबर सुने, कभी किसी ने कहा कि फातिमा को इधर लाओ, फातिमा को कब नहलाना है, फातिमा को कब पहनाना है, क्या कहते हैं? मैयत, मैयत को कफनाना है, बोला फौत हो गए, आखिरी नाम मेरा हल है हमारा उस वक्त लिया जाता है जब लोग हमारी मौत की खबर एक दूसरे को देते हैं। आपको पता है फातिमा का इंतकाल हो गया, आपको पता है सुमैया चली गई, बस ये आखिरी पुकार है। इसके बाद लोग ये नहीं फोन करके पूछते अच्छा फातिमा को कब दफनाना है, फातिमा का जनाजा किस मस्जिद में, लोग कहेंगे अच्छा जी मैयत को कब दफनाना है, मैयत मैयत मैयत। तो मेरा आपका नाम जिसने मैं इतना गुमान में डाल दिया, इसी नाम को जमा बड़ा करने के लिए हमने कई जगह अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, ये नाम सबसे पहले हमसे दूर हो जाएगा। वहुअल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध बिल हक, अल्लाह हम सबको जिंदगी का मकसद याद दिलाते हैं, और वो क्या है? वही है जिसने आसमानों जमीन को बरहक पैदा किया, बरहक के मकसद के साथ पैदा किया, हम इस दुनिया में खेलकूद के लिए नहीं आए, बरहक है ये कायनात। जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए, उस दिन वो हो जाएगा, इसका इरशाद ऐन हक है। और वो दिन कैसा दिन होगा? यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूका जाएगा, और उस दिन बादशाही उसी की होगी, वो गैब और शहादत हर चीज का आलिम और दाना व बाखबर है। सोचिए जरा जिस दिन हम अल्लाह के पास पहुंचेंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा, सब काम उस दिन अल्लाह के हुक्म से होंगे, तो आज क्यों ना हम उसका हुक्म मान लें। इसके बाद अब अगली आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा हक है। बस लोगों ने कहा ये तलाश हक है, ये गलत है। हजरत इब्राहिम कौन थे, कहाँ पैदा हुए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अभी इनके बचपन का किस्सा है, पूरे कुरान में डिफरेंट इनके एज के ग्रुप्स आएंगे, वहां उसके मुताबिक बात करेंगे। अर्ली टीन एज भी नहीं कह लीजिए, 8-9 साल का बच्चा, इर्द गिर्द का पूरा माहौल प्लूटेड है, शिर्क आम है। उर मुकाम के शहर में पैदा हुए, उस दौर में उर को हब ऑफ द सिविलाइजेशन कहते थे, और मैं अगर आसानी से कह दूं कि और उस दौर का यूएसए था, जो आज यूएसए को इज्जत हासिल है, कनाडा को हासिल है, या आप यूरोप को नाम ले लीजिए जहां से मुख्तलिफ चीजें उठती हैं, और इतना ज्यादा दौलतमंद मुल्क था, लोग खाते पीते थे, बुतों को पूजते थे, हजरत इब्राहिम के अपने वालिद बुत बनाते और बेचते थे। लेकिन जब फितरत की अल्लाह हिफाजत करता है जिस पे एक बच्चा पैदा होता है, तो बुरे से बुरे माहौल ने इब्राहिम का कुछ नहीं बिगाड़ा, پہلے تو میں دعا کروں گی کہ اللہ ہمارے وہ بچے جو شرک اور الہاد اور کفر کے ماحول میں پلے اور پیدا ہوئے تو ان کے بھی دین کی حفاظت ایسی کر جیسے ابراہیم کے دین کی کی. جیسے ابراہیم کو کھوج لگ گئی کہ میں اپنے رب کو پالوں, اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ کھوج لگ جائے, کبھی ماحول کا رنگ ان پر نہ چڑھے اور وہ غلط چیزوں میں نہ آئے. آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے کیسے یہ مشاہدہ کے سارا پڑھتے ہیں, پھر اس میں سے چند چیزیں انشاءاللہ جو ہمارے اس وقت عمل کی اس کو ہم دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے, میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. کیا ابراہیم کا یہ پوچھنا بدتمیزی نہیں تھا؟ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ابو آپ کیا کماتے ہیں, ابو آپ کا سورس آف انکم کیا, یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ بدتمیزی نہیں ہے. انداز دیکھیے کتنا پیار ہے ابراہیم کے لمحے میں. تو بعض دفعہ اولادوں کو ماں باپ سے پہلے ہدایت مل جاتی ہے, تو اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب, یہ سب سے بڑا ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو. ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی اور حضرت ابراہیم نے رب کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں دیکھا, نوٹ کیجئے گا نقطہ, آسمان پہ دیکھا. نہ تو ابراہیم نے پہاڑوں کو دیکھا نہ سمندر کو دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ رب اوپر ہے, رب آسمان پہ. جنہوں نے زمین پہ خدا بنائے انہوں نے خداؤں کو رسوا بھی کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے اور آخر میں پھر کیا کہیں گے, میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے اصل بات. یعنی تم سورج کو پوچھتے ہو, تم چاند کو پوچھتے ہو, میں سورج اور چاند کے رب کو پوچھتا ہوں. یہ چیزیں اتنی بڑی ہیں تو ان کو بنانے والا کیسا ہوگا. اور آج آپ دیکھیے کہ سائنس نے جو راز کھولے آسمانوں کے اور سورج کے اور چاند کے, ان کو دیکھ کر ایک دفعہ تو دل ہلتا ہی ہے نا. اگر ہمارے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں اور جو خاص طور پہ اس طرح کے سبجیکٹس لے رہے ہیں, اگر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ چکی اور یہ سب کچھ ابراہیم کو پتا چلا ان کو پتا, تو کیا وہ اپنے ٹیچرز کو غور و فکر پہ مجبور نہ کر دیں کہ دیکھو یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ کا وہ بے ضرر قسم کا نقطہ ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ لک ایٹ دا مون, لک ایٹ دا اسکائی, لک ایٹ دا اوشن, یہ سب کس نے پیدا کیا؟ تو یکسو ہوں گے تو پھر ہوگا. جو ہی ابراہیم نے اپنے ایمان کا اقرار کیا, ذرا قوم کا حال دیکھ لیجئے, اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی. جب سچا ایمان آپ کے اندر آئے گا نا, یاد رکھیے آپ کے قریبی بھی آپ سے جھگڑیں گے. اور قرآن کے سفر کے ساتھ یہ مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. جس دن آپ جا کے کہیں گے اب بس میں قرآن سے جڑ گئی, پھر دیکھیے جو آپ کو وہی باتیں کہ بلا تخاب ہو نہ لو مت لائیں, ایسی ایسی ملامتیں پڑیں گی کہ آپ خوف زدہ ہو کے چھوڑ دیں گے کہ پتہ نہیں میں ٹو مچ تو نہیں ہو گئی, میں نے کوئی اپنے آپ کو زیادہ ہی بہت ان تو نہیں کر لیا دین میں. تو قومیں جھگڑتی ہیں جب لوگوں کو رب مل جاتا ہے. فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ یہ ہے جواب میرا اور آپ کا. کبھی کوئی مجھے اور آپ کو اسلام پہ عمل کرنے کے معاملے میں برا بھلا کہیں تو یہی جواب دیں. کیا کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ کہ میں اللہ کی چھوڑ کر آپ کی مان لوں؟ واخاف ما تشرکون بھی ہی, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے, میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ اس کو کہتے ہیں کانفیڈینس. जब तुम मेरे रब से नहीं डरते तो मैं तुम्हारी देवियों से क्यों डरूं। क्योंकि मुशरिकाना कल्चर में खौफ बहुत होता है। जब कोई अच्छा काम करे और उनके बुतों को बुरा कर, वो कहेंगे देखना अब इनकी मार पड़ेगी, अब इनकी नहुसत पड़ेगी, फलां देवी तुमसे नाराज होगी, देखना तुम्हारे घर बीमारियां आ जाएंगी। तो मुशरिक खौफजदा है और मोमिन अमन वाला है, सुकून वाला है। इसीलिए यही बात कहते हैं कि तुम नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीजों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते, जिनके लिए उसने तुमको की सनत नाजिल नहीं की। हम दोनों फरीकों में से कौन ज्यादा बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहिक है? बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो, हकीकत में दामन इन्हीं के लिए है और आए रास पर वही है जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। इसको हाईलाइट करेंगे, यहां जुल्म से मुराद शिर्क है। इतना बड़ा गुनाह है शिर्क कि अल्लाह ताला ने उसको जुल्म करार दिया, क्योंकि हम अल्लाह का हक किसी और को देने लगते हैं। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को इनकी कौम के मुकाबले में अता की, और हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता करते हैं। हक यह है कि तुम्हारा रब नहायत दाना व अलीम है। फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की, हर एक को राह रास दिखाई, वही राह रास जो इससे पहले नूह को दिखाई गई थी, और इसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेकूकारों को इनकी नेकी का बदला देते हैं। इसी की औलाद से जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को रहयाब किया, हर एक इनमें से सवाले था। इसी के खानदान से इस्माइल, अलयसा और यूनुस और लूत को आरास्ता किया, इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया पर फजीलत बख्शी। नीज इनके आबा अजदाद और इनकी औलाद और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा और इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। कितने नबियों के नाम लिए अल्लाह ने? 18 नबियों का नाम लिया और उनके चुनाव की बात की। क्या चुनाव था? अल्लाह के दीन के काम के लिए चुनेंगे। आज किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब तो मिल जाए, पूरी दुनिया में मैसेज भेजने को दिल चाहेगा, तुम्हें पता है मेरे बेटे को वहां जॉब मिल गई, और तुम्हें पता है आज देखिए किसी को सदर ओबामा का सेक्रेटरी बनने का रुतबा मिल जाए तो कहां लोग पहुंचेंगे उस खबर को लेकर। ये तो दुनिया की चार दिन की बातें है ना। जिसको अल्लाह के दीन की जॉब मिल जाए उसकी शान क्या है? अल्लाह ने खास तौर पे नबियों का कहा, वज तबई ना हम, चुना भी वहदई ना हम, और उनको हिदायत भी दी। तो क्या हम चाहते हैं कि हम चुने जाए? तो फिर अल्लाह से चुपके से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह जैसे तूने इन नबियों को चुना हमें भी चुन ले, हमारी नस्लों को चुन ले, हमारे बच्चों को चुन ले, हमारे बड़ों को चुन ले, हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को चुन ले। और जब अल्लाह चुनता है तो यकीन करें अल्लाह को पूछना कोई नहीं पड़ता, राजा को भी अल्लाह चुन लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आगे हम पढ़ेंगे, आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई, तड़प आपकी मेरी होगी। जितना तड़प कर इस रमजान में आप अपने लिए दुआएं करेंगे ना, देखिएगा रमजान के बाद आपके लिए नेकियों के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आप कहेंगे चलो कितने पारे रह गए, कितने रोजे रह गए, तो बस इसी पे सिलसिला रुक जाएगा, और अल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला कभी खत्म ना करे, चलते ही जाएं। और अब आप आगे नोट कीजिएगा कि जब कोई चुना गया तो हम कहते हैं जब कोई चुना जाता है तो बस उसकी तो सारी बातें पूरी हो जाती है। फरमाया नहीं, लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया कराया गारत हो जाता। यहां नोट कीजिए जुमला, शिर्क इतना ज्यादा फ्लेमेबल है कि अंबिया कराम की सारी जिंदगी की नेकियां जाया हो जाती हैं अगर वो शिर्क करते। तो मैं और आप और आम अनपढ़ किस्म के लोग जब कब्रों पे जाकर माथे टेकते हैं और इस तरह की शिरकिया बातें करते हैं तो उनकी नेकियों के साथ क्या होता होगा? देखिए कितनी भी बड़ी चीज हो एक चिंगारी से आग लग जाती है। नेकियों की कसरत पे नहीं मान करना, इल्म हासिल करके देखना है कि कहीं जानते या अनजाने में हमसे कोई शिर्क तो नहीं हो रहे। और हदीस में आता है कि शिर्क इतना खफीफ है, छुपा हुआ है, काली रात में स्याह पहाड़ पर काली चींटी जैसे नजर नहीं आती, इस तरह शिर्क भी नजर नहीं आता। हम खुद से पूछें और इस पे गहरा इल्म लेने की जरूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट शर्त है जन्नत में जाने की कि शिर्क ना किया हो। लोगों का डर भी शिर्क की एक किस्म है, रियाकारी भी शिर्क है, दिखावा भी शिर्क है, नमाज ना पढ़ना भी शिर्क है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें छोटे बड़े हर किस्म के शिर्क से पाक कर दे। फरमाया उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म और नबुवत अता की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इसके मुनकर नहीं। ए नबी, वही लोग इसकी तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग और हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं। ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया के लिए। ये आज भी एक सच्चे दाई दीन का स्लोगन होना चाहिए कि ला असलुकुम अलैहि अजरन, मुझे इस काम पर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और तुम दे भी कह सकते हो, किसके पास कुछ है कि किसी को दीन की बात बताने का कोई मुआवजा दे सके। अल्लाह के नबी लोगों की जेबों की तरफ नहीं देखते थे, वो बेनियाज थे, बल्कि क्या है, इन हुआ इल्ला जिक्रा लिल आलमीन। ये नसीहत है हम लोगों के लिए, यानी इस किताब को पेड जॉब्स के साथ आम नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। जहां एक एक मिनट गिना जाए, एक एक घंटा काउंट हो, वहां फिर वो खलूस और वो इतमाद नहीं आता। तो अल्लाह के नबी जितने भी गुजरे, 18 नबियों के यहां नाम है, टोटल 25 अंबिया, सब की एक ही खूबी थी कि वो इस काम के बदले में कुछ तलब नहीं करते थे। और जब लोग ऐसे बेलौस लोगों को काम करता देखते हैं तो वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि इनको क्या हुआ, ये बच्चों को क्यों रुला के लेकर आते हैं, इनको क्या मसला है। फिर समझ आती है कि ये बहुत अकलमंद लोग हैं, ये यहाँ अपने बच्चों को थोड़ा सा रुला लेते हैं लेकिन ये अगली जिंदगी की खुशियां पाने के लिए आते हैं, ये जन्नत को पाने के लिए आते हैं। अल्लाह के दीन के काम वॉलंटियरली ही होते हैं, ये काम वॉलंटियर समझते हैं ना क्या होता है, दिल की खुशी से करना, मजबूरी से कोई नहीं करवा सकता ये काम किसी से। आज दुआ कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा के हर बंदे को ये तलब लग जाए कि अल्लाह मुझे अपना काम करने वाला बना दे। शिर्क कब होता है, सवाल पैदा होता है कि लोग शिर्क में क्यों मुब्तला होते हैं, जब वो अल्लाह की कदर नहीं करते, जब उनको अल्लाह की अथॉरिटी का नहीं पता। इसलिए पहली दफा अब हमारे सबक में आ रहा है, 3 दफा ये पूरे कुरान में आयत आती है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कि उसकी कदर का हक था। राइट और रॉन्ग, 3 सेकंड तक यहां गौर करते हैं हम सब, क्या मैंने अल्लाह की उतनी कदर की जितनी कदर का हक था, क्या मैंने अल्लाह का सही अंदाजा लगाया। अगर मैंने अल्लाह ताला के 99 नेम्स और एट्रीब्यूट्स को ही नहीं समझा अभी तक, तो मुझे अल्लाह का अंदाजा हो भी नहीं सकता। हमने क्या सोचा है, अल्लाह वो जिसके सामने मस्जिद में जाकर सजदा करते हैं वो अल्लाह है, और बाकी नफा बैंकों के पास, नुकसान खानदान के पास, इज्जत लोगों के पास, शोहरत बड़े लोगों के पास, सारी चीजें दुनिया वालों के हाथों में देकर फिर नमाज का वक्त आता है जाके माथा टेक आते हैं, तो फिर अल्लाह की कदर नहीं की। जिस दिन अल्लाह की कदर हमारे दिल में आ जाएगी, अल्लाह के दीन की भी कदर होगी, अल्लाह की किताब की भी कदर होगी। कैसे पता चलता है कि मैं अल्लाह की कदर है, इसका क्राइटेरियन अल्लाह की किताब की कितनी कदर है, अल्लाह के दीन की कितनी कदर है, अल्लाह के कहे हुए हुक्मों की कितनी कदर है। तो हर बंदा अपना रास्ता खुद जानता है। फरमाया जब के कहा, अब यहां उनकी नाकदरी वाला एक जुमला, इस कालुमान सल्लल्लाहु अलैहि बशर मिन शैइन, जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया, इनसे पूछो फिर वो किताब जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो कुछ छुपाते हो, जिसके जरिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को, आखिर इसका नाजिल करने वाला कौन था। बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर इन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। वहां ज किताब हो मुबारक, हाईलाइट कर ले आयत 92 का शुरू, इसी किताब की तरह ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया, बड़ी खैर और बरकत वाली है। देखिए ये किताब जिस वक्त आपके मेरे हाथ में इसको छुएं, प्यार से इसको टच करें, अल्लाह ताला कहते हैं ये बरकत वाली किताब है। हकीकत ये है कि ये किताब जहां रखी गई वो बरकत बन गई जगह, मक्का में उतरी तो मक्का बरकत वाला, जिस फरिश्ते के जरिए आई तो वह रूहुल अमीन बन गए, और जिस नबी के ऊपर उतरी तो अल्लाह ने उसको आखिरी नबी कहकर बता दिया। और आज आप और मैं अगर इस किताब की बरकतें समेटना चाहते हैं ना, इसको हाथों में लेकर देखें, ऐसे आपके वक्त में बरकत है। जितना आप इस किताब के साथ वक्त गुजारेंगी वक्त में बरकत, आप इसमें माल लगाएंगी माल में बरकत, आप जवानी लगा दें आपकी जवानी में बरकत, सेहत लगा दे इसमें बरकत। ये जो एक गुमान है ना कि ये किताब बूढ़ों के पढ़ने वाली है, अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हम तो सोचते हैं किताब पढ़ाने वाले बड़े बूढ़े से होते हैं, तो बूढ़े होंगे तो फिर आखिरी उम्र में पढ़ेंगे ना। आप जवानी में इस किताब को ले लें, आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, पूरे यकीन से कह सकती हूँ। ये किताब इंसान की सारी कमियों को दूर कर देती है, और आज उम्मत मुस्लिमा इस किताब की बरकतों से महरूम है, बिलीव में। इस किताब की अगर बरकत आज मैंने और आपने समेटी होती ना, तो हम लोगों से एड लेने वाले नहीं, उनको देने वाले होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये किताब दोबारा उम्मत मुस्लिमा के हाथों में आ रही है। हम पे भी बनी इसराइल की तरह वो एक दौर गुजरा है कि किताब को पीछे डाल दिया था, वराज हो रही है और वत्तबाउ शहवात, ख्वाहिशों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस किताब की बरकत से हम फायदा उठाएं। आपकी मेमोरी शार्प होगी, अभी तो आप सिर्फ सुन रहे हैं ना, अगर अल्लाह ने आपका नसीब अच्छा रखा और आप रमजान के बाद लफ्जी तर्जमे के किसी कोर्स में चले गए, बिलीव में आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी, वो याददाश्त तेज होती है इस किताब से। मुझे कोई अभी सुबह ही कह रहा था आप लोगों में से कि आपके पास तो कोई नोट्स ही नहीं होते, आप कैसे बोलती हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र करे मेरे पास नोट्स नहीं है, ये 6 घंटे का दौरा कुरान हो जाएगा एक बारा। मैं तो टच नहीं कर रही आजकल किसी किताब पढ़ने इल्म को कि मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी, फिर मेरा दिल करता मैं दूं। मैंने उनको कहा कि आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से अपने आप को रोकती हूँ, क्योंकि मेरे पास नए लोग हैं और नए लोगों को दिल करता है ऐसे उंडेल के दे दो कि जैसे प्यासे को दे दो। किसी के पास कोई प्यासा और आपके पास पानी हो, आपका दिल क्या करेगा, थोड़ा दो। मैंने कहा स्टूडेंट सामने बैठे उनके साथ दौरे कुरान में, मैं सिर्फ तर्जमा करवाऊँ, मुझे पता है उनको बहुत कुछ मिल गया हुआ, लेकिन मैं सब्र करके रोक के अपने आप को रखती हूँ। कोई बात नहीं, अभी ये पहला सफर है, अभी एक लेयर लगी, अभी इस पर बड़ी लेयर्स लगनी है, फिर आप देखिएगा जो आपका फहम और होगा। और ये आयतें कहाँ मिलती हैं, आप सिर्फ सादा अरबी का कुरान दे दें, मैं यही कुछ बोलूंगी जो आपके सामने इस तर्जमे वाले कुरान से बोल रही हूँ। ये तो आपके दिल पे लिखी जाती हैं, आपके दिमाग आपकी आंखों में। क्या आपको अपने बच्चों के नाम देख देख के पढ़ने पड़ते हैं, क्या आपको अपने खानदानी वाकयात को सुन सुन के लिख लिख के रखना पड़ता है? तो जब ये किताब आपका ओढ़ना, आपका बिछाना, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका पैशन है, तो क्या आप नोट्स देख कर ये पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे? नहीं, ये किताब जब तक आपकी जिंदगी की किताब नहीं बनती। और ये लज्जत मैं आपको कहती हूँ लेकर देखें। वो कहते हैं ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत याचने। चुपके चुपके आप मुस्कुरा देते हैं, कुरान की कवायत याद आ जाती। चुपके चुपके आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, कुरान की कवायत याद आती। आप सारा दिन रहते लोगों में, लेकिन आप टच कर रहे होते हैं आयतों को, उधर हुई कुरान में ये, इधर हुई कुरान में। और अगर आपके साथ फिर कोई ऐसा हो शख्स जिसको भी आती है, तो कई ऐसे साथी हैं जिनके साथ हम आपस में सिर्फ कुरान की जुबान में बात करते हैं, खुद बोल के 6 जुमले बोलेंगे, बात नहीं समझा पाएंगे, एक जुमला के एक लफ्ज बोल देंगे तो वो समझेगा हाँ बात सच है। तो दुआ करते हैं ये हम सब अपने लिए कि अल्लाह इस किताब से दोस्ती हो जाए, अल्लाह ये किताब मेरी तन्हाइयों की साथी बन जाए, अल्लाह ये किताब मेरा ओढ़ना बिछोना बन जाए, और अल्लाह कुरान को मेरे साथ कब्र में भी नाखिल कर देना। अल्लाह मैं इस किताब के बगैर नहीं रह सकती, अल्लाह मेरी जिंदगी का एक भी दिन ऐसा ना हो कि ये किताब ना खुले, यानी ये किताब हमारी ऑक्सीजन बन जाए। वी कैंट लिव विदाउट दैट। अगर उम्मत मुस्लिमा का इस किताब से इतना प्यार हो जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, सेलफोन लेते हो तो ले जाओ, ये किताब नहीं मैं छोड़ सकती, तुम मेरी गाड़ी की चाबी लेते हो ले जाओ, मैं ये किताब नहीं छोड़ सकती, यकीन करें आप इस किताब को ले लें, आपका रब आपको सब कुछ दे देगा। आज उम्मत ने ये किताब छोड़ी, सब दूसरों से मांगना पड़ रहा है, गरीब मुफलिस कलाश थर्ड वर्ल्ड में हम बन गए, हम मांगने वाले बन गए। लोगों को भी पता है मुस्लिम इज इक्वल टू पुअर, मुस्लिम वो जिसकी मदद करी जाती है। इन गरीब मुल्कों को दो अपने उतरे हुए लंडे के कपड़े, ये पहन पहन कर खुश हो जाएंगे। क्यों? किताब जो छोड़ी हुई है। आप और मैं इस किताब को पकड़े, ये किताब इज्जत दिलवाती है। और याद रखिए कि ये इज्जत फिर जब मिलती है तो फिर दुनिया हैरान हो जाती है, ये कहां से हो गया, ये कैसे हो गया। दुआ करें एक दफा हमारी जिंदगी में तो ऐसे आ जाए।